नमस्कार।
द डीप डाइव में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही शानदार अध्याय की गहराई में उतरेंगे। विजयनगर साम्राज्य। हम देखेंगे कि ये साम्राज्य अपने शिखर यानी अपोजी पर कैसे पहुंचा, इसका पतन क्यों हुआ
और इसकी वास्तुकला और प्रशासन में क्या खास था।
एग्जैक्टली। और हमारे पास जो सामग्री है वो बिल्कुल परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स की तरह है।
जी, और हमारा मकसद भी यही है कि इन महत्वपूर्ण सवालों को हम तोड़कर सरल भाषा में समझें,
ताकि हर जरूरी डिटेल, हर तारीख और हर नाम आसानी से याद हो जाए।
बिल्कुल।
ठीक है, तो चलिए इस ज्ञान के खजाने को खोलते हैं।
चलिए।
तो पहला और सबसे बड़ा सवाल लेते हैं। ये अक्सर 8 मार्क्स का एक क्लासिक सवाल होता है। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ एपोजी एंड फॉल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर।
बहुत जरूरी सवाल है
जी।
और इसके देखिए दो हिस्से हैं। पहले बात करते हैं साम्राज्य के सुनहरे दौर की, यानी एपोजी की।
इसका शिखर।
जी, किसी भी साम्राज्य का जो सुनहरा दौर होता है वो अक्सर एक महान शासक से जुड़ा होता है,
और विजयनगर के लिए वो नाम कृष्णदेव राय का है।
बिल्कुल। कृष्णदेव राय, उनका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक,
करीब 20 साल।
हाँ, उन 20 सालों को ही विजयनगर का शिखर माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ भी किया।
उनकी सैन्य सफलताएं तो बहुत मशहूर हैं। उन्होंने उड़ीसा के शासकों और बीजापुर के सुल्तानों को भी हराया था।
सही बात है, उनकी सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी, जिसे हम कॉन्स्टेंट मिलिट्री प्रिपेयरनेस कह सकते हैं। लेकिन असली जीनियस ये था कि इन जीतों से उन्होंने शांति और समृद्धि का माहौल बनाया।
पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं तो व्यापार फलता फूलता है।
एग्जैक्टली। और यही किसी भी साम्राज्य के अपूजी की नींव होती है। और ये समृद्धि सिर्फ खजानों में नहीं
बल्कि इमारतों में भी दिखती थी। वो एक ग्रेट बिल्डर भी थे, है ना?
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागालपुरम नाम का एक पूरा टाउनशिप बसाया।
अच्छा।
और हम्पी में जो मशहूर विरूपाक्ष मंदिर है,
हाँ, विरूपाक्ष टेम्पल,
उसका जो विशाल गोपुरम मतलब रॉयल गेटवे है, वो भी उन्होंने ही बनवाया था। ये उनकी शक्ति का प्रतीक था।
तो फिर पतन कैसे हुआ? मतलब एक इतना मजबूत साम्राज्य।
अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर, फॉल यानी पतन के कारण।
जी।
और कहानी का दुखद मोड़ भी यहीं से शुरू होता है। कृष्णदेव राय के बाद जो शासक आए, मतलब उनके सक्सेसर्स,
वो उतने काबिल नहीं थे।
नहीं थे। और साम्राज्य के अंदर ही जो नायक थे, मतलब मिलिट्री चीफ्स,
वो विद्रोही होने लगे। अच्छा, तो इंटरनल वीकनेस।
जी, केंद्रीय सरकार सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई और 1542 तक सत्ता आरा विदु वंश के हाथों में आ गई,
जिनके मुख्यमंत्री थे राम राय।
हाँ, राम राय वो एक चतुर रणनीतिकार तो थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी थे। उन्होंने एक बहुत खतरनाक खेल खेला,
डेक्कन सल्तनत्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला।
बिल्कुल। उन्होंने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा को आपस में लड़ाने की नीति अपनाई,
जो कुछ समय तक तो काम कर गई होगी।
हाँ, लेकिन सुल्तानों को जल्द ही समझ आ गया कि राम राय उनके आपसी झगड़ों का फायदा उठा रहे हैं।
और फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया।
सही कहा। तीनों सुल्तानों ने मिलकर एक गठबंधन, एक अलायंस बना लिया और 1565 में उन्होंने विजयनगर पर हमला कर दिया।
यही है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध।
जी, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसे राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं। इस लड़ाई में राम राय को निर्णायक रूप से हरा दिया गया
और उनकी हत्या कर दी गई।
हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को बेरहमी से लूटा और नष्ट कर दिया।
वो शहर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था,
वो खंडहर बन गया।
तो एक एग्जाम पॉइंट के तौर पर इस 8 मार्क्स के सवाल के लिए अपोजी और फॉल दोनों के 4-4 पॉइंट्स लिखने चाहिए।
हाँ, बिल्कुल। अपोजी में कृष्णदेव राय का नाम जरूर लिखें और फॉल में तालीकोटा की लड़ाई।
राइट। एंड टू रिमेम्बर,
कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509-29 और तालीकोटा की लड़ाई का साल 1565। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं।
चलिए, अब ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। शहर के दिल यानी रॉयल सेंटर की बात करते हैं। सवाल है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये भी 8 मार्क्स का एक बड़ा सवाल है।
रॉयल सेंटर साम्राज्य का, आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट था। यहाँ 60 से ज्यादा मंदिर और 30 महलों जैसी इमारतें थीं।
वाह, इसकी सबसे प्रभावशाली संरचना कौन सी थी?
बिना किसी शक के, महानवमी डिब्बा।
महानवमी डिब्बा।
जरा कल्पना कीजिए, एक 11,000 स्क्वायर फीट में फैला एक विशाल मंच और 40 फुट ऊंचा।
ये तो बहुत ही बड़ा रहा होगा।
बहुत। महानवमी यानी दशहरा के त्योहार पर राजा यहाँ अपनी शक्ति, धन और सत्ता का प्रदर्शन करते थे, और जो नायक होते थे वो राजा को भेंट देते थे।
तो ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था।
एग्जैक्टली, पावर का प्रदर्शन।
और लोटस महल, उसका नाम ही बहुत खूबसूरत है।
लोटस महल वाकई में एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत है। उसकी खासियत है उसके मेहराबदार दरवाजे, आर्च्ड गेटवेज।
अच्छा।
माना जाता है कि ये एक काउंसिल चेम्बर था जहाँ राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे।
और मैंने सुना है इसकी बनावट में इंडो इस्लामिक स्टाइल का मिश्रण है।
सही, ये उनकी कल्चरल सिंथेसिस को दिखाता है।
और मंदिरों में, रॉयल सेंटर में कोई खास मंदिर?
हाँ, हजारा रामा मंदिर।
हजारा रामा मंदिर?
हाँ, ये शायद सिर्फ राजा और उनके परिवार के इस्तेमाल के लिए था।
अच्छा, एक प्राइवेट टेम्पल।
जी। इसके भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है।
कमाल है। तो एग्जाम पॉइंट के लिए 8 मार्क्स में महानवमी डिब्बा, लोटस महल और हजारा राम मंदिर का वर्णन करना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, ये तीनों संरचनाएं रॉयल सेंटर की शक्ति और संस्कृति को दर्शाती हैं।
एंड टू रिमेम्बर,
महानवमी डिब्बा शक्ति प्रदर्शन का केंद्र, लोटस महल सलाह के लिए और हजारा रामा टेम्पल शाही परिवार का निजी मंदिर।
एक शहर की भव्यता उसकी सुरक्षा और संसाधनों पर भी निर्भर करती है। तो किलेबंदी पर एक छोटा सवाल है, 3 मार्क्स का। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर।
विजयनगर की किलेबंदी फोर्टिफिकेशन बेजोड़ थी। अब्द अल रजाक, जो एक यात्री थे, उन्होंने लिखा है कि शहर के चारों ओर 7 दीवारें थीं।
7 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स।
जी, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी
कि
इन दीवारों के अंदर खेत भी थे।
हाँ, दीवारों के अंदर न केवल शहर बल्कि खेत, बगीचे और जंगल भी थे।
ये तो बहुत ही अजीब है।
क्यों?
यह एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, ताकि लंबी घेराबंदी माने सीज के दौरान शहर को भोजन की कमी ना हो।
वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। मतलब दुश्मन बाहर बैठा रहे, अंदर खाना उग रहा है।
बिल्कुल। और इन दीवारों को बनाने की तकनीक भी खास थी।
बिना गारे
यानी मॉर्टर के बड़े पत्थरों को वेज शेप में काटकर एक दूसरे में फंसाया गया था।
और पानी का क्या? वो तो एक सूखा इलाका था। इससे जुड़ा सवाल भी 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर विद एग्जाम्पल्स।
ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने पास बहने वाली तुंगभद्रा नदी का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया।
कैसे?
नदी के किनारे तटबंध, एम्बैंकमेंट्स
बनाकर लिया,
जलाशय, रिजर्वॉयर्स बनाए गए।
इसका कोई उदाहरण जो आज भी मौजूद हो?
हाँ, कमलापुरम टैंक। ये टैंक खेतों की सिंचाई तो करता ही था,
साथ में एक नहर के जरिए रॉयल सेंटर तक भी पानी पहुंचाता था।
जी, और एक और नहर थी, हिरिया नहर।
हिरिया कहना।
ये भी तुंगभद्रा पर बने एक बांध से पानी लेकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल होती थी।
तो एग्जाम पॉइंट के लिए फोर्टिफिकेशन में खेतों को घेरना सबसे यूनिक पॉइंट है।
और वाटर मैनेजमेंट के लिए कमलापुरम टैंक और हिरिया कैनाल का उदाहरण देना जरूरी है।
रिमेम्बर दिस, फोर्टिफिकेशन खेत अंदर, दुश्मन बाहर।
और वाटर मैनेजमेंट कमलापुरम टैंक और हिरिया कैनाल।
चलिए अब विजयनगर की वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। मंदिरों पर एक 8 मार्क्स का सवाल है। डिस्क्राइब द रिलीजियस आर्किटेक्चुरल ट्रेडिशंस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर।
विजयनगर की मंदिर वास्तुकला की अपनी एक खास पहचान बन गई थी।
जैसे कि विशाल गोपुरम।
बिल्कुल, ऊंचे शाही प्रवेश द्वार गोपुरम्स, जो मुख्य मंदिर से भी बड़े होते थे, और विस्तृत नक्काशी वाले खंभों से बने बड़े बड़े हॉल जिन्हें मंडपा कहते हैं।
और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण
विट्ठल टेम्पल।
हाँ, इसका तो मैंने भी सुना है।
यह मंदिर अपने पत्थर के रथ स्टोन चैरियट के लिए प्रसिद्ध है,
और संगीतमय खंभों के लिए भी, सिंगिंग पिलर्स।
जी, ऐसे खंभे जिन्हें थपथपाने पर संगीत के सुर निकलते हैं, और मंदिरों से निकलने वाली चौड़ी सड़कें चारियोट स्ट्रीट्स, जिनका उपयोग त्योहारों और बाजारों के लिए होता था।
कमाल है। और ये साम्राज्य चलता कैसे था? ये नायक और अमर नायक कौन थे? सवाल है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नायकाज एंड अमरा नायकाज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर। 8 मार्क्स।
ये दोनों ही शक्तिशाली मिलिट्री चीफ्स थे।
अच्छा।
नायक ये किलों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख थे, ये अक्सर विद्रोही भी हो जाते थे।
और अमर नायक?
अमर नायका सिस्टम विजयनगर का एक पॉलिटिकल इनोवेशन था। ये दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम पर आधारित था।
ये काम कैसे करता था?
अमर नायकों को राजा की तरफ से शासन करने के लिए क्षेत्र, टेरिटरीज दिए जाते थे।
और बदले में?
उनका कर्तव्य था टैक्स वसूलना, राजा के लिए सेना रखना और सालाना ट्रिब्यूट यानी भेंट भेजना। यह सिस्टम राजा को इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में मदद करता था।
तो एग्जाम पॉइंट में वास्तुकला के लिए विटला टेम्पल का स्टोन शैरियट एक की पॉइंट है।
हाँ, और प्रशासन के लिए अमरा नायका सिस्टम को पॉलिटिकल इनोवेशन के रूप में समझाना जरूरी है।
एंड रिमेम्बर दिस,
विटला टेम्पल, स्टोन शैरियट
और अमरा नायका सिस्टम एकता सिस्टम से प्रेरित।
ये साम्राज्य तो खंडहर बन गया था, तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? यहाँ कॉलिन मैकेंजी का नाम आता है। एक 3 मार्क्स का सवाल। Analyze the contribution of Colin McKenzie.
Colin McKenzie, जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे।
First surveyor general.
जी, उन्होंने ही 1800 में हम्पी के खंडरों को दुनिया के सामने लाया। उन्होंने इसका पहला सर्वे मैप तैयार किया।
और जानकारी कहाँ से जुटाई?
पुजारियों से मिली मौखिक परंपराओं, ओरल ट्रेडिशंस के आधार पर।
अच्छा,
तो अंत में एक और 8 मार्क्स का सवाल। Describe the significance of the Vijayanagar Empire in Indian history. भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है?
इसका महत्व बहुत गहरा है।
जैसे कि राजनीतिक नवाचार।
हाँ, अमराय नायका सिस्टम, फिर उनकी इंजीनियरिंग मतलब उत्कृष्ट जल प्रबंधन,
वास्तुकला, भव्य मंदिर और शहर नियोजन।
बिल्कुल।
और सांस्कृतिक संश्लेषण भी, जैसे लोटस महल में भारतीय और इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रण।
और एक खास बात, राजा हिंदू सुरतराण की उपाधि भी धारण करते थे।
हाँ, यानी हिंदू सुल्तान, यह उनकी धार्मिक भूमिका को दिखाता है। और आज इसकी विरासत है हम्पी, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
तो एग्जाम पॉइंट के लिए कॉलिन मैकेंजी के योगदान में फर्स्ट सर्वेयर जनरल और फर्स्ट मैप याद रखें।
और साम्राज्य के महत्व में राजनीति, इंजीनियरिंग और वास्तुकला जैसे विविध पॉइंट्स दें।
रिमेम्बर दिस, कॉलिन मैकेंजी 1800 और हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की कहानी, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी भव्यता, ताकत और कला के लिए जाना जाता था।
यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक साम्राज्य जो बाहरी खतरों से बचने के लिए इतनी मजबूत किलेबंदे कर सकता था,
अपने खेतों तक को दीवारों के अंदर ले आया।
हाँ।
उसका पतन आंतरिक कमजोरियों और राजनीतिक भूलों के कारण हुआ।
ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ दीवारों में नहीं होती,
बल्कि नेतृत्व और नीतियों में होती है।
बिल्कुल सही। अगली बार तक सीखते रहें और सोचते रहें।